कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना जय राधा माधव राधा माधव राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Jaya Radha Giridhari, Radha Giridhari, Radhe. Jaya Radha Giridhari, Radha Giridhari, Radhe. Jaya Radhe, 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 Jaya Sri Radhe, Radhe. Jagannatha Swami Nayana Patagami নয়ন পথগামী ভব তুমি জগন্নাথ স্বামী। জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভব তুমি জগন্নাথ স্বামী। জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় বলদেব জয় মা সুভদ্রা জয় জগন্নাথ। জয় গৌরানিতা জয় গৌরানিতা গৌরানিতা জয় গৌরানিতা গৌরানিতা জয় গৌরা জয় জয় প্রভুপাদ 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 জয় জয় প্রভু নিতাই গৌরা হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল। শ্রীল প্রভুপাদ কি ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ভগবতে বাসুদেবায় শ্রীমদ ভাগবতম স্কন্দ ন অধ্যায় ন শ্লোক ক্রমাঙ্ক 46। शब्दों का परिचय इस प्रकार है, मेरे बाद आप लोग दोहराएं। ये विक्षिप्त इंद्रिय धियः देवाः ते स्वहृदि स्थितं न विन्दन्ति प्रियं शाश्वत आत्मानं কিম উত অপরে। ইয়ে বিক্ষিপ্তেন্দ্রিয় ধিয়ো ইয়ে বিক্ষিপ্তেন্দ্রিয় ধিয়ো দেবাস্তে স্বহৃদি স্থিতম দেবাস্তে স্বহৃদি স্থিতম ন বিন্দন্তি প্রিয়ম শাশ্বত ন বিন্দন্তি প্রিয়ম শাশ্বত আত্মানম কিমুত পরে আত্মানম কিমুত পরে। ইয়ে বিক্ষিপ্তেন্দ্রিয় ধিয়ো দেবাস্তে স্বহৃদি স্থিতম ন বিন্দন্তি প্রিয়ম শাশ্বত আত্মানম কিমুত পরে। ইয়ে বিক্ষিপ্তেন্দ্রিয় ধিয়ো দেবাস্তে স্বহৃদি স্থিতম ন বিন্দন্তি প্রিয়ম শাশ্বত আত্মানম কিমুত পরে। शाश्वत आत्मानं किमुता परे ये विक्षिप्तेन्द्रियाधियो न विन्दन्ति प्रियं शाश्वत आत्मानं किमुता परे ये विक्षिप्तेन्द्रियाधियो देवास्ते स्वहृदि स्थितम् न विन्दन्ति प्रियं शाश्वत आत्मानं किमुता परे प्रियं शाश्वत आत्मानं किमुता परे ये विक्षिप्तेन्द्रियाधियो देवास्ते स्वहृदि स्थितम् न विन्दन्ति प्रियं शाश्वत आत्मानं किमुता परे।
शब्दों का अनुवाद इस प्रकार है, ये जो महापुरुष विक्षिप्तेन्द्रिय धियः जिनकी इंद्रियां मन तथा बुद्धि सदैव भौतिक अवस्थाओं के कारण विक्षुब्ध रहती है, देवाः देवताओं की तरह, ते ऐसे व्यक्ति स्वहृदि अपने हृदय में स्थितम स्थित न नहीं विन्दन्ति जानते हैं प्रियम अत्यंत प्रिय शाश्वत निरंतर आत्मानं भगवान को किम उता क्या कहा जाए अपरे अन्यों के विषय में। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। यद्यपि देवताओं को स्वर्गलोक में स्थित होने का लाभ मिलता है, किंतु उनके मन इंद्रियों तथा बुद्धि भौतिक अवस्था से विक्षुब्ध रहती है, अतएव ऐसे महापुरुष भी हृदय में स्थित भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाते, तो फिर अन्यों का विषय में क्या, यथा मनुष्यों के विषय में क्या कहा जाए जिन्हें बहुत ही कम लाभ प्राप्त है। तात्पर्य, वस्तुतः भगवान हर एक के हृदय में स्थित रहते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय स अर्जुन तिष्ठति। लेकिन हम अपनी भौतिक चिंताओं के कारण भगवान को समझ नहीं पाते, यद्यपि वह हमारे सन्निकट स्थिति होता है। जो लोग सदैव भौतिक अवस्थाओं में विक्षुब्ध रहते हैं, उनके लिए योग के विधि संस्तुति की जाती है, जिससे वे अपने हृदय में स्थित भगवान पर अपना मन केंद्रित कर सकें। ध्यानावस्थित तद्गते न मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। चूंकि भौतिक जगत में मन तथा इंद्रियों विक्षुब्ध रहती है, अतएव मनुष्य को धारणा आसन तथा ध्यान जैसी योग की विधियों में मन को शांत करके उसे भगवान की केंद्रित करना चाहिए। दूसरे शब्दों में योग की विधि इस साक्षात्कार की भौतिक प्रयास है, जबकि भक्ति इस साक्षात्कार की आध्यात्मिक विधि है। महाराज खटवंग ने आध्यात्मिक मार्ग ग्रहण किया अतएव उन्हें किसी भी भौतिक वस्तु से रुचि नहीं रह गई थी। भगवद गीता में 18वें अध्याय के 55 श्लोक में कृष्ण कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है। केवल भक्ति के द्वारा परम ब्रह्म भगवान कृष्ण को समझा सकता है। भगवान यह कभी नहीं कहते कि उन्हें योगाभ्यास या दार्शनिक चिंतन के द्वारा जाना जा सकता है। भक्ति ऐसे सारे भौतिक प्रयासों से बढ़कर है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा ध्यानावृतम, भक्ति अमिश्रित शुद्ध अन्वय होने के कारण ज्ञान या पुण्य कर्म से भी कलुषित नहीं होती है।
ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामैहं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। संकर्षण कारण तुसाई गर्भोदसाई च पयोधिशाई शेषश्च जस्यां सह सकल सनित्यानंदाक्षर रामं शरणं ममास्तु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। भागवत कक्षा में सभी भक्तों को स्वागत है। श्रीमद्भागवतों के 9वें स्कंद के अध्याय 9 जिसका शीर्षक है अंशुमान की वंशावली, उसका चर्चा चल रहा है। तो सगर महाराज उनके पुत्र अंशुमान और उनकी वंशावलियों के बारे में वर्णन करते करते महाराज खटवांग के कथा या प्रसंग अभी चल रहा है। एकदम कुछ ही श्लोकों में महाराज खटवांग के बारे में यहाँ वर्णन किया गया और उनकी शुद्ध भक्ति के बारे में। जैसे हम सबको पता है देवासुर संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम के असुरों को पराजय करने के बाद, देवताओं को असुरों को पराजय करने में देवताओं को खटवांग महाराज ने मदद किए थे, अतः देवताओं ने प्रसन्न होकर अंशुम महाराज खटवांग को कुछ वर देना चाहते थे, परंतु उन्होंने पूछा कि मुझे वर नहीं, ये बताइए मैं और कितना दिन जिंदा रहूँगा। बोले गए एक क्षण मात्र है। तो वो सुन के तुरंत ही स्वर्ग छोड़ के अपने राज्य में आ गए। फिर वो विचार कर रहे हैं अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर लगाने के लिए, वो कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं। स्वयं महाराज खटवांग ही अपने बारे में बोलते हैं इन श्लोकों में, किस प्रकार से ब्राह्मणों के प्रति उनका आसक्ति है, अतः ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, उनका सुनना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि बचपन से मैंने कोई ऐसे पाप कार्यों में लिप्त नहीं था, इस प्रकार से वो बताते हैं। और पिछले श्लोक में, कल जो श्लोक हुआ था 45 नंबर श्लोक, उसमें वे कहते हैं कि देवता लोगों ने, देवताओं ने जो अलग अलग लोगों के अधिष्ठाता देव हैं, उन लोगों ने मुझे अनेकों प्रकार की वर देने के लिए उत्सुक थे, या मुझे वर मांगने के लिए बोल रहे थे, परंतु मैंने वर नहीं लिया, है ना। विचार कीजिए एक भक्त का किस प्रकार सा भाव और त्याग। देवताओं ने उनको बुला के वर देना चाहते हैं, मगर उन्होंने नहीं लिया खटवांग महाराज ने। फिर आज के श्लोक में वे कहते हैं कि वे लोग जिनका मन और बुद्धि हमेशा भौतिक कर्मसों के कारण विक्षुब्ध रहता है, परेशान रहते हैं, ऐसे लोग हैं देवता। भौतिक कर्मसों के कारण मन बुद्धि विक्षुब्ध होने पर वे अपने हृदय में स्थित परमात्मा को भी नहीं जान पाते हैं। अगर वही लोग नहीं जान पाते हैं, देवता लोग, तो फिर हमारा क्या कहना, है ना, मनुष्यों का क्या कहना, ऐसे आज के श्लोक में कहते हैं। अत्यंत सरल है, तो उसको श्रील प्रभुपाद जी ने हमें इस श्लोक से क्या शिक्षा देना चाहते हैं, उसको हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहला प्रसंग के बारे में, जैसे हमने अभी सुना खटवांग महाराज, ये श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है। पिछले श्लोक में 45 नंबर श्लोक में खटवांग महाराज कहते हैं, देवै कामवरो दत्त मह्यम त्रिभुवनेश्वरैः न वृणे तमहं कामं भूतभावन भावनः। उनका कहना है कि देवताओं ने मुझे वर देने के लिए इच्छा प्रकट किया कि हे खटवांग महाराज, हम आपको वर देना चाहते हैं, जो चाहिए वो मांगो, परंतु खटवांग महाराज ने मना कर दिया, नहीं चाहिए करके बोला। ये पिछले श्लोक में बताया गया है। अभी देवताओं ने खटवांग महाराज को वर देना चाहा, परंतु खटवांग महाराज ने मना किया। खटवांग महाराज मना करने के पीछे दो कारण वो बताते हैं, क्यों उन्होंने देवताओं से वर लेने के लिए मना किया, वो दो कारण बताते हैं। पहला, जो कि 45 नंबर श्लोक में ही है, पीछे वाले श्लोक में ही है, पहला कारण, त्रिभुवनेश्वरै देवै मह्यम कामवरम दत्त। मह्यम मतलब मुझे, कामवरम, वरम मतलब वरदान, कामवरम इच्छित, जो चाहिए वो वर देना चाहते हैं। कौन कौन देना चाहते हैं? देवै त्रिभुवनेश्वरै, तीन भुवनों की जो अधिष्ठाता है, कंट्रोलर्स, है ना, उन लोगों ने मुझे वर देना चाहते हैं। परंतु भूत भावना भावना अहम तम कामम न वृणे, न वृणे मतलब नहीं चाहा, मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि भूत भावना भावना अहम तम, अहम मतलब मैं, भूत भावना भावना, इस संसार की रचयिता में मेरा मन होने के कारण इस भौतिक चीजों के प्रति मेरा इच्छा नहीं थी, इसलिए मैंने मना कर दिया। ये पहले श्लोक में बोलते हैं। तो पहले श्लोक से या पूर्व श्लोक से ये पता लगता है, खटवंग महाराज को देवताओं का वर मना करने के पीछे पहला रीजन क्या है कि उनका मन भगवान पे लगा हुआ था, भगवान पे लगा हुआ था, अतः देवताओं के द्वारा प्रदत्त भौतिक वर को उन्होंने नकार दिया या ठुकरा दिया, पहला कारण। दूसरा कारण ये श्लोक है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, द रीजन ही डिड नॉट एक्सेप्ट द बोन्स, देवताओं का वर को स्वीकार न करने का एक कारण यह भी है। तो ये कैसे एक कारण है इस श्लोक, ये आज इस श्लोक से हम लोग देखेंगे। अभी तक आपको पता लगा खटवांग महाराज देवताओं से वर नहीं लिए, उसके पीछे दो कारण है, पहला उनका मन भगवान पे केंद्रीभूत था, अतः भौतिक इच्छाओं को और भौतिक वरों को और नकार दिए। दूसरा कारण श्लोक नंबर 46, अभी श्लोक नंबर 46 के बारे में हम लोगों ने चर्चा करेंगे। पहला, ये विक्षिप्तेन्द्रिय धियो देवस्ते स्वहृदि स्थितम, इसमें एक शब्द आता है देवा, जो कि पहले वाले श्लोक में भी यह शब्द आया है देवई करके, ये देवताओं के बारे में बोला गया। एक भगवान है, बाकी सब उनके सेवक, तो जितने भी स्वर्ग में या देवता है ये लोग स्वर्ग में निवास करते हैं और उनका काम है भगवान को असिस्ट करना, है ना। एक भगवान होते हैं और जितने भी देवता हैं वो भगवान के अधीनता में उनकी कार्यों में उनको असिस्ट करते हैं, है ना। ये डेमिगॉड से देवता हैं संसार में, ये खास करके हमारे भारत में ये बहुत गलत फहमी फैला हुआ है कि बहुत सारे भगवान है करके, कोई गणेश को भगवान कहते हैं, कोई दुर्गा जी को भगवान कहते हैं, कोई शिव जी को भगवान कहते हैं, यहाँ तक भी साईं बाबा को भी भगवान कह देते हैं, मगर ये सब भगवान नहीं है। भगवान केवल अकेला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, केवल एक ही भगवान है, वो है भगवान कृष्ण या विष्णु, बाकी जितने भी डेमीगॉड्स है वो सब उनकी सर्वेंट्स है, उनकी सेवक है, चाहे इंद्र, चाहे गणेश, चाहे ब्रह्मा जी, चाहे वो शिव जी, चाहे कोई भी क्यों ना, वो सब लोग भगवान की सेवा करते हैं। और ये सारे देवताएं रहते कहां पर है, स्वर्ग में, हमसे भी ऊपर लोक में रहते हैं। ये पूरा भौतिक ब्रह्मांड सात लोगों से बना हुआ है, भौतिक ब्रह्मांड। भौतिक ब्रह्मांड मतलब केवल पृथ्वी नहीं, पृथ्वी से ऊपर 6 लोक है और पृथ्वी से नीचे 7 लोक, ऐसे 14 लोगों को लेके ये भौतिक ब्रह्मांड बना हुआ है। तो हम लोग बीच में रहते हैं, तो ये जो देवता लोग है हमसे एक दो स्टेप ऊपर रहते हैं, दो लोग ऊपर रहते हैं, उसको स्वर्ग कहते हैं। ये स्वर्ग में देवताओं का स्थान है, उनका शरीर हमारे जैसा नहीं है, हमारा शरीर पंचभूतों से बना हुआ है ना, उनका शरीर उससे भी सूक्ष्म चीजों से बना हुआ है। सबसे ज्यादा भोग करने की वस्तुएं, एंजॉयमेंट करने की वस्तुएं वो स्वर्ग में उपलब्ध होता है। जैसे प्रभुपाद अनुवाद करते हैं, यद्यपि देवताओं को स्वर्ग में स्थित होने का लाभ मिलता है, स्वर्ग में जाना वो एक लाभ है, है ना, वो उनको मिला हुआ है स्वर्ग में रहने का। क्या लाभ है स्वर्ग में रहने का, तो स्वर्ग में रहने से हमें ज्यादा भोग करने की वस्तुएं प्राप्त होते हैं। सबसे पहला, वहां पे कोई बच्चा नहीं होता है, रोना नहीं पड़ता है बचपना। दूसरा, कोई बूढ़ा नहीं होता है। तीसरा, कोई बीमार नहीं गिरता है। चौथा, जो भी खाएंगे टॉयलेट जाने की जरूरत नहीं है। बताओ कितनी सुविधाएं हैं, बीमारी नहीं, बुढ़ापा नहीं, बचपना नहीं, है ना। और खाना भी कैसा, कोई सॉलिड थिंग्स नहीं है, सब कुछ जूस, है ना, जूस है सब कुछ, सोमरस। और खाओ, खाने के बाद क्या करो, अप्सराओं का डांस देखो, देखो कितना एंजॉयमेंट है वहां पर। ये लोग, और वहां रहते कौन, देवता लोग। हालांकि ये देवता लोग हमसे ऊंचे कोटि के है और भगवान से नस्तिक है, फिर भी उन लोगों का जो स्थान है रहने का, वहां पे भोग की सामग्रियों का उपलब्धि बहुत मात्रा में है, पूरी तरह से। इसलिए वो कंटिन्यूस वहां पे उपभोग करते हैं। भले ही वो लोग भगवान की सेवा में नियोजित है, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, मगर साथ साथ में भोग की सामग्रियों को वो भोग करते हैं। अतः क्योंकि भोग की मात्रा ज्यादा है, इसलिए उनका मन भगवान से हटकर ये इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है और कभी कभी बहुत बड़े से बड़े गलती करने बैठ जाते हैं और हमेशा चिंतित भी रहते हैं। कभी कभी हम इस संसार में सोचते हैं मेरा चिंता का कारण है कि मुझे कोई भोग फैसिलिटीज नहीं मिल रहा है, भोग करने का सामग्री नहीं मिल रहा है, सुविधाएं नहीं मिल रहा है, इसलिए हम चिंतित रहते हैं। पैसा होगा तो भोग करने की सामग्रियां हमें मिल जाएगी, तभी हमारा चिंता दूर हो जाएगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट है फिलहाल इस भौतिक संसार में। परंतु हम देख सकते हैं जिसके पास भोग करने की सभी सामग्री होने पर भी वो चिंताग्रस्त है। इसी धराधाम का अगर उदाहरण लें, ऐसे कई उदाहरण हैं। हिरण्यकश्यपु के बारे में सोचिए, क्या नहीं था उनके पास, संसार के हर एक लोग से एक एक स्त्री उसके पास थी, वो सबसे ज्यादा सुंदर भी था हिरण्यकश्यपु, वो कुरूप नहीं था उनका, सबसे ज्यादा बलवान भी था, उन्हें देखकर ही देवता लोग अपना सिंहासन छोड़कर चले गए थे, है ना। वो जैसे चाहता था वैसे इस वातावरण को भी बदल सकता था, इतना पावरफुल व्यक्ति था, फिर भी हर समय एंजाइटी, हर समय चिंताग्रस्त था वो। ठीक है, इस संसार के बारे में छोड़िए, देवताओं के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हम इस संसार में कई लोगों का यह इच्छा है कि हेवन, स्वर्ग में जाना है, हमें स्वर्ग जाना चाहिए अपने को, है ना, ऐसे कई लोगों का इच्छा रहता है और देवी देवताओं का उपासना करने का इच्छा रहता है। तो उन लोगों के बारे में सोचेंगे, क्या वो लोग हमेशा खुश रहते हैं, हालांकि उनको सब प्रकार की सुविधाएं हैं, है ना। देखिए, स्त्री सुख है, स्त्री सुख का तो हद हो गया कि वहां पे जो अप्सराएं हैं वो भोग की सामग्रियां हैं, वो अप्सराएं ना तो किसी की मां हो सकती है ना किसी की बहन हो सकती है, जो चाहे वो उन्हें भोग सकते हैं। खाना जितना भी चाहे उतना खाओ, कोई शारीरिक तकलीफ नहीं होगा। नंदन कानन जैसा गार्डन है, और क्या चाहिए, है ना। और वहां पे बहुत प्रकार की योगिक शक्ति भी प्राप्त हो जाता है देवलोक में जाने पर, सब कुछ वहां पर है, फिर भी देवता लोग चिंतित रहते हैं। कितने उदाहरण है अपने पुराणों में, कोई एक छोटा सा योगी या तपस्वी थोड़ा सा कठिन तपस्या करने लग गया तो इंद्र को टेंशन चालू हो गया ना? वो खुद टेंशन में आता है और साथ साथ में सभी देवताओं को टेंशन में डाल देता है, और सभी देवताओं को टेंशन में डाल के कुछ उत्पटांग कार्य कर लेते हैं, फिर वो उनको भागना पड़ता है स्वर्ग से, फिर सब लोग शिव जी के पास, वहां से ब्रह्मा जी के पास, फिर वहां से भगवान विष्णु के पास भागते हैं सोल्यूशन के लिए। अल्टीमेटली लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु ही उनका सोल्यूशन प्रदान करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। ऐसे कितने उदाहरण है, ये सभी प्रकार के सुख सुविधाएं होने पर भी देवता लोग ऐसे ऐसे गलतियां करते हैं, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इंद्र होके, देवताओं का राजा होके ऐसा गलती कैसे कर सकता है, चंद्र देवताओं के ऐसा गलती कैसे कर सकता है। कभी कभी देवताओं के एक्टिविटीज को देखेंगे तो राक्षस और असुरों की एक्टिविटीज से भी गया गुजरा हुआ है। हाँ, ऐसे कई एक्टिविटीज है कि राक्षसों के कार्यों से भी देवताओं का कार्य एकदम निंदनीय है। कभी कभी राक्षस अपने मान इज्जत को बचाने के लिए, अपने शौर्य को दिखाने के लिए वो लोग सामने से कार्य करते हैं, कभी कभी देवता लोग पीछे छुप के कार्य करते हैं। कितने ऐसे निंदनीय कार्य शास्त्र में दिखाई पड़ता है, हालांकि उनके पास सभी सुख सुविधाएं हैं, शांति से भोगो और शांत रहना चाहिए, नहीं। क्योंकि इंद्रिय भोग कभी भी भोग करते करते केवल इंद्रियों को शांत नहीं रखेगा, जैसे कि आग जलता हुआ आग में घी डालने से वो खत्म नहीं, मतलब आग शांत नहीं होगा और भड़केगा वो। इसलिए केवल एक ही उपाय है, इंद्रिय निग्रह, सेंस कंट्रोल, सभी पदार्थों से इंद्रियों को खींच के लेके आ जाना चाहिए। तो ये देवताओं की स्थिति है। क्योंकि हर समय उन्होंने भोग में लगे रहते हैं, इसलिए उनका मन भगवान से हट जाता है। जब भी लात पड़ती है तभी उन्हें याद आता है कि हम कृष्ण के सेवक हैं, उनकी शरण में जाना चाहिए। हर समय ऐसा होता है। भागवतम में कई उदाहरण है। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड भगवान स्वयं कृष्ण को ही इंद्र भूल गए थे, ब्रह्मा जी भूल गए थे। ब्रह्मा जी क्यों भूल गए थे? उच्च पदवी के वजह से। इंद्र अहंकार अपना ताकत के वजह से भूल गया वो भगवान है करके। जब भी पता चला तभी क्षमा मांग रहे, मुझे क्षमा कर दीजिए। भोगैश्वर्य प्रसक्तानम तया अपहृत चेतसाम। अगर हम भोग में प्रवृत्त हो जाते हैं तो अपना बुद्धि को हर लिया जाता है, तो हमारा बुद्धि भगवान पर नहीं लगा पाते हैं हम लोग। तो ये देवता लोग हैं। श्री प्रभुपाद क्या कहते हैं? भौतिक अवस्थाओं में विक्षुब्ध रहते हैं वो लोग। भौतिक अवस्था क्योंकि भोग की सारे सामग्रियों को भोगते हैं इसलिए। और ऐसे विक्षुब्ध होने वाला व्यक्ति कभी भी वो अपने हृदय में स्थित, और हृदय में कैसे स्थित, वहां पे क्या लिखा है? शाश्वत, हमेशा हृदय में रहने वाले प्रियम, जो कि सुहृद है अपना, अपना प्रिय है, सबसे प्रिय या सबसे सुहृद जीवात्मा का कौन है? परमात्मा। हमेशा जीवात्मा के साथ कौन रहते हैं? परमात्मा। कहां पर रहते हैं? हृदय में रहते हैं। ऐसे हमेशा साथ में रहने वाले सबसे प्रिय व्यक्ति परमात्मा, जो हमारे हृदय में ही रहते हैं, ऐसे परमात्मा का अनुभव वो लोग नहीं कर सकते हैं। जो लोग हमेशा भोग प्रवृत्तियों में लगे रहते हैं, जिनका मन और बुद्धि विक्षुब्ध हुआ रहता है, वो लोग भगवान को नहीं जान सकते। तो ये देवता लोग हैं जो कि हमेशा ऐसे विक्षुब्ध रहते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं, तो वो कैसे भगवान को, वो नहीं भगवान को जान सकते हैं। अगर वो भगवान को नहीं जान सकते तो वो मुझे क्या वर देंगे और मैं उनसे क्या वर लूंगा? इसलिए खटवांग महाराज ने उनसे कुछ वर नहीं लिया। फिर वो आगे क्या कहते हैं खटवांग महाराज? वो तो इन लोगों का ये स्थिति है जो बड़े बड़े देवता लोग हैं, स्वर्ग में रहते हैं, फिर मनुष्यों का क्या कहना, अपना क्या कहना, अपने बारे में सोचिए। उनके पास सभी सुविधा है तो फिर शांति से रहकर भजन कर सकते हैं। हम अभी क्या सोच रहे हैं? कुछ अच्छे से कमा लूंगा, थोड़ा पैसा आ जाएगा, श्री प्रभुपाद जी के वजह से मुझे ज्ञान मिल गया, भक्ति करनी चाहिए और मेरा परिवार ठीक से चलेगा और कोई तकलीफ नहीं रहेगा, तो मैं ठीक से भक्ति कर सकूंगा, ऐसे सोचते हैं ना। इसलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं ताकि एक दिन मैं इससे छुटकारा मिल जाएगा मुझे और मैं भक्ति करूंगा। उनके पास तो सब कुछ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो नहीं कर पाते हैं, भोग प्रवृत्ति में लग जाते हैं। तो इस प्रकार से अपना मन और बुद्धि भौतिक कर्मों से, भौतिक परिस्थितियों से जिनका विक्षुब्ध होता है, हमेशा विचलित रहता है, वो हृदय में स्थित भगवान को कभी भी नहीं जान सकते हैं। तो ऐसे देवता लोग हैं। तो इस प्रकार के देवताओं का वर को मैं लेके क्या करूंगा, जो कि खुद ही परेशान है, तो वो मुझे क्या वर देंगे और मैं क्या लूंगा? ये दूसरा कारण है कि इसलिए मैंने उनसे वर नहीं लिया। ये खटवांग महाराज का प्रसंग है। तो अभी खटवांग महाराज की इस शब्द को या इस कथा को प्रभुपाद जी ने कैसे हमें समझाते हैं अपने तात्पर्य में, तो थोड़ा प्रभुपाद जी की दृष्टि से देखेंगे, उनके तात्पर्य के बारे में समझेंगे। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम लोग कलयुग के निवासी हैं और वो भी ये आधुनिक जमाने की। श्रील प्रभुपाद जी से पहले भी अनेकों आचार्य हुए हैं जिन्होंने बहुत ऊंचे ऊंचे कोटि के भागवतम और भगवत गीता के ऊपर टीकाएं परपोर्ट्स लिखे हैं, परंतु उन सारे टीकाओं को हम लोग नहीं समझ पाएंगे जब तक श्रील प्रभुपाद जी को हम नहीं समझते हैं। इसीलिए कलयुग वासियों के लिए श्रील प्रभुपाद जी के जो भक्ति वेदांत तो तात्पर्य, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमें एक श्लोक समझना है तो हमें कई बार 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 हमें उसकी तात्पर्य को पढ़ना चाहिए, तभी हमें जाके श्लोक समझेगा। इसलिए प्रभुपाद इस तात्पर्य में क्या बतलाना चाहते हैं, हमको क्या बताएं वो देखेंगे। सबसे पहले प्रभुपाद शुरू करते हैं, भगवान सबके हृदय में रहते हैं। गीता का श्लोक लिखते हैं, ईश्वर सर्वभूतानम हृदय स्व अर्जुन तिष्ठति, भगवान सभी जीवात्माओं के हृदय से हृदय में निवास करते हैं। परंतु हम लोग भौतिक कल्मषों से कलुषित होने के कारण उन्हें नहीं जान पाते हैं। तो फिर वहां पे वो लिखते हैं, जो लोग सदैव भौतिक अवस्थाओं में विक्षुब्ध रहते हैं उनके लिए योग की विधि संस्तुत की गई है। जो लोग या जिनका मन या बुद्धि हमेशा चिंताग्रस्त या विचलित रहता है, जिनका मन हमेशा इंद्रिय भोग में, अलग अलग कार्यों में, जिनका बुद्धि हमेशा विचलित रहता है, विक्षुब्ध रहता है, ऐसे लोगों के लिए क्या संस्तुति की गई, क्या प्रेस्क्राइब किया गया, योग की विधि, योग उनके लिए संस्तुति की गई। तो योग के द्वारा क्या होगा, जिससे वे अपने हृदय में स्थित भगवान पर अपना मन केंद्रित कर सकते हैं। योग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपना मन को हृदय में स्थित भगवान के ऊपर केंद्रित कर सकते हैं। हमारे हृदय में स्थित भगवान के ऊपर मन को केंद्रित करने के लिए आवश्यकता क्या है, योग। कैसे लोगों के लिए, जिन लोगों का मन और बुद्धि भौतिक कल्मषों के द्वारा हमेशा विक्षुब्ध रहता है, हमेशा चिंताग्रस्त परेशानी रहता है, परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए योग की विधि दी गई है करके प्रभुपाद कहते हैं। तो ये योग क्या है इसे भी जानना चाहिए, क्योंकि साधारणतः योग का मतलब या अभी के जमाने के लिए सभी लोग यह सोचते हैं कि जैसे बहुत सारा शारीरिक व्यायाम होता है उससे योग समझते हैं। अनेकों ऐसे योगा टीचर्स होते हैं और कुछ ऐसे बाबाएं होते हैं जो लोग योग सिखाते हैं लोगों को। असलियत में योग मतलब शास्त्र में जहां तक बताया गया, युयति इति योगः, युजति शब्द का अर्थ है जो हमें योग करता है, मिलाता है, कनेक्ट करता है, उसे योग कहा गया है। तो किससे कनेक्ट करता है, जो जीवात्मा को परमात्मा के साथ, जीवात्मा का संबंध परमात्मा के साथ को पूर्ण करता है, उसे योग कहा गया है। ये असलियत में योग का अर्थ है। योग मतलब कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है, ये कोई जिम्नास्टिक नहीं है योग का अर्थ। योग का मतलब जीवात्मा का संबंध परमात्मा के साथ, परमात्मा और जीवात्मा का संबंध को जोड़ना, ये योग का कार्य है। चाहे वो कोई भी योग क्यों ना हो, योग कई प्रकार के हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, कि कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है ना, और भक्ति योग है, जो भगवद गीता में ये वर्णन किया गया, चार प्रकार का, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। फिर ये कर्म योग भी, कर्म योग के अंदर कर्म कांड आता है, फिर निष्काम कर्म, ऐसे दो भागों में उसको विभक्त किया जाता है। सबसे पहले ये हमारे ध्यान में रखना चाहिए, योगा मीन्स भगवान के साथ का हमारा संबंध है ना, योग का अर्थ भगवान के साथ का संबंध, ये योग है। योग भगवान के साथ का जो संबंध हमारा टूटा हुआ है उसको जोड़ता है, वो योग है। चाहे वो कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे वो ध्यान योग हो और चाहे वो भक्ति योग क्यों ना हो, ये सभी योगों का उद्देश्य क्या है, भगवान के साथ हमारा संबंध को जोड़ना, ये योग का अर्थ है। कर्म योग में दो प्रकार हैं, दो भाग है, जैसे कर्मकांड और निष्काम कर्म। और निष्काम कर्म अर्थात फल की इच्छा ना रखते हुए कृष्ण की सेवा करना, ये निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म को भी श्रील प्रभुपाद ने दूसरे अध्याय में भक्ति योग करके लिखते हैं। दूसरा स्टेप आया ज्ञान योग। ज्ञान योग क्या है, जिसमें कुछ ऐसे ज्ञान योगी लोग होते हैं, उन लोगों ने उपनिषद, वेद, वेदांत इत्यादियों का अध्ययन करते हैं और ये निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि ब्रह्म, जो भगवान के शरीर से निकलने वाले तेज, यही सर्वोपरि है, इसलिए उसको उसको या उसमें लीन होने के लिए प्रयास करते हैं। ये ज्ञान योग है और ज्ञान योगियों का काम है। उससे थोड़ा ऊपर है, ऊंचा है, वो है ध्यान योग। जिसको अष्टांग योग कहा गया है, यम नियम प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग है, इसी को ध्यान योग कहा गया है। इसका शुरुआत कहां से होता है? यम। यम मतलब कुछ ऐसे कार्य है जिसको नहीं करना, नियम कुछ ऐसे कार्य है जिसको करना, ये यम नियम। ये यम नियम जो स्ट्रिक्टली पालन करता है उसके बाद उसे क्या करना चाहिए, आसन, सिटिंग, कैसे बैठना चाहिए, बहुत सारे आसन होते हैं, आसन सीखना चाहिए। आसन के बाद प्राणायाम, प्राणायाम अपने सांस की गतिविधियों को अपने कंट्रोल में करना, जिसके द्वारा हमारा मन एक ही जगह केंद्रीभूत हो सकता है। जैसे ही मन एक जगह केंद्रीभूत होता है प्राणायाम के द्वारा, फिर उन्हें क्या करना चाहिए, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, इंद्रिय भोगों से अपने इंद्रियों को वापस लेना चाहिए, फिर उसके बाद धारणा, ध्यान, फिर समाधि के स्तर तक जाएगा। ये ध्यान योग का मार्ग है जिसे अष्टांग योग कहा जाता है। इस प्रकार से भी अपने मन को केंद्रीभूत करके भगवान का अनुभव, हमारे हृदय में स्थित परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है। परंतु इससे सर्वोपरि, इन सबसे भी ऊपर एक है जो है भक्ति योग। श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय में बहुत सुंदर तरीके से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं। ये इस योग लेडर या योग की सीढ़ी के बारे में बताते हैं। एक व्यक्ति सबसे पहले पशु के स्तर में रहता है, उसके बाद वो कर्मयोग के स्तर में आएगा। कर्मयोग दो प्रकार का होता है, कर्म कांड और निष्काम कर्म। फिर कर्मयोग से वो ज्ञान मार्ग में जाएगा, जहां पे वो ब्रह्म की उपासना कर सकता है या ब्रह्म में लीन होने की आशा रखता है। वहां से शास्त्रों के ज्ञान के द्वारा कभी कभी वो अष्टांग योग की ओर जा सकता है। अष्टांग योग में ये आठ प्रकार के योग की विधियों को पालन करते करते वो परमात्मा का जो ध्यान है वो लगा सकता है। मगर इससे ऊपर क्या है, भक्त, जो कि भक्ति योग का पालन करता है। वर्तमान युग के लिए असलियत में भक्ति योग ही प्रैक्टिकल है, और बाकी ज्ञान और ध्यान योग ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य हमें क्या, क्यों आवश्यक है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जानते हैं हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या अप्लीकेबल है। तो वो शास्त्रों को उसी हिसाब से हमें समझाते हैं जो कि हम कर सकते हैं। भले ही श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग इत्यादि योगों के बारे में वर्णन किया गया, मगर श्रील प्रभुपाद हरेक जगह अपने तात्पर्यों के द्वारा उन्होंने उन चीजों को समझा कर ये भक्ति योग ही है करके वो प्रस्तुत करते हैं। इसी को भक्ति वेदांत परपोट्स कहा जाता है। भक्ति वेदांत परपोट का अर्थ जानना चाहिए, भक्ति ही वेदों का अंत है करके जो अपने परपोट्स में प्रमाण करता है, साबित करता है, वो भक्ति वेदांत परपोट है, और वो भक्ति वेदांत स्वामी ने किया। भक्ति ही वेदों का अंत है करके जिन्होंने प्रमाण किया, जिसके द्वारा वो भक्ति वेदांत परपोट है और वो भक्ति वेदांत स्वामी है। वेदों का अंत भक्ति ही है करके प्रमाण किया। आज का श्लोक देखिए, खटवांग महाराज ने सीधा कहते हैं कि देवता लोगों का मन विक्षुब्ध रहता है इंद्रिय भोग के कारण, इसलिए उन लोगों ने परमात्मा पर ध्यान नहीं लगा पाते हैं। श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में क्या बताया, तात्पर्य की लास्ट लाइन में अन्याभिलाषिता शून्य इस श्लोक को लाके रखा। ये क्या है, शुद्ध भक्ति का लक्षण, अन्याभिलाषिता शून्य। कहां से कहां तक लेके आए उन्होंने, सबसे पहले बताया जिसका मन बिगड़ा हुआ रहता है उसको क्या चाहिए, योग चाहिए। कौन सा योग चाहिए, ध्यान धारणा के बारे में वो पहले बोलते हैं प्रभुपाद तात्पर्य में। ध्यान धारणा के बारे में क्या, क्यों बोलते हैं, उसका मन केंद्रित होना चाहिए करके। फिर आगे उन्होंने क्या लिखते हैं, ये जो अतएव मनुष्य को ध्यान धारणा तथा ध्यान जैसे योग की विधियों मन को शांत करके भगवान को केंद्रित करना चाहिए। मगर दूसरे शब्द में योग की इस विधि इस साक्षात्कार की भौतिक प्रयास है। अगर ध्यान मार्ग से कोई इस साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार करना चाहता है, दैट इज मेटेरियल एक्चुअली, वो भौतिक है। तो भक्ति योग आध्यात्मिक है। तो वहां से प्रभुपाद ने पूरा तात्पर्य को बदल दिया, किसमें, भक्ति में। फिर उन्होंने बताया खटवांग महाराज ने इसलिए कोई भी भौतिक इच्छा नहीं किया, केवल भक्ति की इच्छा किया, क्योंकि भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्त ही मुझे समझ सकता है। फिर सब जगह कहते हैं सब कुछ छोड़ के मेरा भक्ति करो, मन मना भव मत भक्तो, यहां तक लाए। फिर अंत वाले श्लोक में कहां समाप्त किए परपोट को, अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म अनावृतम, वहां पे एकदम इस श्लोक के द्वारा प्रभुपाद जी ने ये काट दिए कि भगवान को जानने के लिए ज्ञान और कर्म की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान कर्म अनावृतम, आवृत नहीं होना चाहिए, आवश्यक ही नहीं है ज्ञान और कर्म, केवल भक्ति भगवत तत्व को जानने के लिए काफी है। तो ये प्रैक्टिकल है हमारे लिए इस कलयुग के लिए, केवल भक्ति योग। तो भक्ति योग क्या है, कैसे करना चाहिए, बहुत आसान, जो कि श्रीमन महाप्रभु ने आके ये हरिनाम संकीर्तन हमें प्रदान किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सारा ये योग की पद्धतियां हैं पूर्व जमाने के लिए, पहले युगों के लिए। कृते ध्यायतो विष्णु, सत्युग में भगवान की ध्यान किया जाता था। त्रेतायाम जजतो मुखे, द्वापर युग में यज्ञ, द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में ड्यूटी वर्शिप, अर्च विग्रह की सेवा। कलौ तत् हरि कीर्तनात्, कलयुग के लिए क्या है, हरिनाम संकीर्तन, ये भक्ति योग है। तो इसीलिए जब तक हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को नहीं समझते हैं, उन्हें नहीं पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक, हम शास्त्रों को नहीं समझ पाएंगे। बहुत सुंदर और सिंपल उदाहरण है, श्रील प्रभुपाद जी से पहले भगवत गीता था या नहीं, श्रील प्रभुपाद जी से पहले भागवतम था या नहीं, था। श्रील प्रभुपाद जी से पहले बड़े बड़े आचार्य आए थे या नहीं, आए थे। विश्वनाथ श्रीधर स्वामी, उनके बाद जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अलग आचार्य छोड़िए, अपने संप्रदाय का आचार्य सोचिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, कौन कौन नहीं थे, ऐसे ऐसे आचार्य थे। उन सभी लोगों ने भगवत गीता के ऊपर भी तात्पर्य लिखा और श्रीमद् भागवतम के ऊपर भी तात्पर्य लिखा, कितने लोगों को भक्त बनाया। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य आवश्यकता है। आज उन सारे आचार्यों की टीका को, तात्पर्यों को ये भक्त लोग बहुत आसानी से कैसे समझ पाते हैं, क्योंकि उनके सामने श्रील प्रभुपाद जी की टीका है। एक बहुत मजेदार उदाहरण था, एक मेरा दोस्त है, वे संस्कृत ग्रामर पढ़ने के लिए वृंदावन इस्कॉन छोड़ के भागे और वो ग्रामर पढ़े, उनका ग्रामर पढ़ना भी खत्म हुआ। ग्रामर इसलिए पढ़े आचार्यों की टीकाओं को समझना था उनको। उन्होंने उनके गुरुजी के पास रुके, पढ़े, गुरुजी के साथ घूमे, गुरुजी का सेवा किए, उनके साथ ही थे। एक दिन मुझे भागवतम क्लास देना था और मैंने उनको फोन किया, मैं बोला कि फलाना श्लोक के ऊपर मुझे क्लास देना है, उस श्लोक मुझे समझाओ, क्योंकि तुम जानते हो, और उस श्लोक के ऊपर तो संस्कृत में जो चीजें लिखा था मैं उनके पढ़ को सुनाया, और उनके पास किताब था, उन्होंने भी पढ़ा, उन्होंने नहीं समझ पाया, उनके गुरुजी को भी पढ़वाया और उनके गुरुजी ने अनुवाद किया। हालांकि संस्कृत भाषा का अनुवाद उन्होंने ठीक किया, मगर भागवतम के हिसाब से एकदम गलत अनुवाद किया था उन्होंने, प्रभुपाद जी के अनुवाद के हिसाब से उन्होंने पूरा गलत किया था, और हालांकि फिर बाकी आचार्यों के हिसाब से भी वो गलत गया था। इसलिए केवल संस्कृत की ज्ञान रखना या दूसरे आचार्यों को पढ़ने से भागवतम जैसे ग्रंथ को हम नहीं समझ सकते हैं। हमारे लिए सबसे पहला मूल है श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को जब तक हम पढ़ के हजम नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं, जब तक नहीं समझते हैं, तब तक हम दूसरों की अपना ये बहादुरी दिखाने के लिए दूसरे ग्रंथों में हमें नहीं घुसना चाहिए। इसलिए सबसे पहले भक्ति वेदांत तात्पर्य मेन, जब तक भक्ति वेदांत तात्पर्य नहीं समझता है व्यक्ति, तब तक कोई भी टीका वो नहीं समझ सकता है, नहीं समझेगा। इसलिए हमारे लिए ये है, क्योंकि हम इस आधुनिक जमाने के पढ़े लिखे मूर्ख हैं, और हमारे जैसे पढ़े लिखे मूर्खों के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने अपने भगवद गीता दिया है, इसलिए उसे पढ़ना चाहिए। अस्पताल जाएंगे, बुखार के लिए बहुत सारे दवाई उपलब्ध है, हम थोड़े ना कि तेज बुखार हैं और हम कोई भी दवाई लाके खा सकते हैं, नहीं, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उससे परामर्श लेना चाहिए। वो हमें टेस्ट करेगा हमारा बुखार कितना टेम्परेचर का है, क्या क्या बुखार है, किस प्रकार का बुखार है, उस हिसाब से वो प्रेस्क्राइब करेगा मेडिसिन, और उस प्रेस्क्राइब मेडिसिन को ही हमें स्वीकार करना चाहिए, वो भी वो जैसे बोला वैसा। और अगर हम अपने हिसाब से क्रोसिन इत्यादि गोलियों को खा के बुखार ठीक करने जाएंगे तो हमें ये बीमारी और ज्यादा हो सकता है। इसलिए डॉक्टर और प्रेस्क्रिप्शन की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग ज्यादा बीमार हैं और वो हमारे लिए मेडिसिन और प्रेस्क्रिप्शन क्या है, श्रील प्रभुपाद जी का भक्ति वेदांत तात्पर्य। तो ये भक्ति वेदांत तात्पर्य है। आज के तात्पर्य बहुत एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने शुरू करते हैं कहां से और अंत करते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम श्लोक में, कहां तक लेके गए अपने को। ये भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद है। भक्ति वेदांत का अर्थ मतलब समझते हैं ना, भक्ति ही वेदों का अंत है करके जो प्रमाण किया उन्होंने, भक्ति वेदांत स्वामी है, तो वो श्री प्रभुपाद है। श्रील प्रभुपाद की भक्ति वेदांत तात्पर्य की, श्रीमद भगवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे।